सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद नवा अध्याय 39वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। 3:9:39 प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषिर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को संसारिक प्रतीत होते हैं, संसारी प्रतीत होते हैं, भौतिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे मैं अतीव प्रसन्न हूं। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूं। तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतोगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुणमयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। आज अनुलंबित भुजो कनका वदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पन्दो चित्रो छंदो तमोन्नतो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं और भगवान उनको बता रहे हैं कि देखो, जब तुम्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं थी और तुम पता लगाना चाह रहे थे कि जो कमल का फूल है इसकी जो नाल है उसका स्रोत क्या है, तो तुमने डुबकी लगाई पानी में, तो उस समय मैंने तुम्हारे हृदय में अपना जो अपने बारे में जानकारी है मैंने प्रकट कर दी थी, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। भगवान भगवान का एक नाम चैत्य गुरु भी है, भगवान हृदय में ज्ञान प्रकट कर देते हैं, है ना। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट कर दिया और उस दिव्य ज्ञान के बल पर ब्रह्मा जी ये जान पाए कि वो कौन है और भगवान से उनका क्या संबंध है। और फिर उसके बल पर उन्होंने भगवान की अनेक स्तुतियां की। तो भगवान ने कहा, जो तुमने स्तुतियां की हैं वो भी तुम ये मत सोच लेना कि मतलब तुम में योग्यता थी तो तुमने स्तुति कर ली। हाँ, मेरी कृपा है कि तुम मेरी स्तुति कर पा रहे हो, है ना। तुमने अपने दिमाग से स्तुति नहीं तुम कर पाए। जैसे कि भागवतम में हम देखते हैं, जब छोटा सा बच्चा प्रहलाद महाराज, हाँ, भगवान के सामने गए, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, भगवान ने सिर पे हाथ रखा तो कितनी अच्छी स्तुतियां की, है ना। ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, कितनी भगवान की उन्होंने स्तुतियां की। तो वो स्तुतियां कैसे कर पाए, वो स्तुति करने की योग्यता भी भगवान से ही प्राप्त हुई। और भगवान भगवद गीता में कह ही रहे हैं कि जितनी भी विभूतियां हैं, इस संसार में जो कुछ भी है, नर के अंदर जो योग्यता है, सूरज में प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, जल में स्वाद है, कुछ भी चीज है, राजाओं में शासन करने की शक्ति है, वो मेरे से है। और उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हें क्या क्या बता दूं मैं, बहुत मतलब असंभव है पूरी अपनी योग्यताओं को, अपनी शक्तियों को बता पाना। बस इतना समझ लो, जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है वो मेरे कारण है। अगर कोई चीज सुंदर दिख रही है, किसी में कुछ ताकत दिख रही है, तो उसका कारण मैं हूं। मैं हूं तो उसके अंदर वो शक्ति है, वो सुंदरता है। मैं अगर नहीं चाहता तो उसमें वो सुंदरता है, शक्ति नहीं हो पाती है ना। सो यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति भगवान को मिलता है, वो भगवान की स्तुति क्यों करना शुरू कर देता है, नहीं? आखिर मतलब ऐसी क्या बात है कि कोई भी मिलेगा भगवान की स्तुति ही कर रहा है वो, नहीं? आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, जिसने भी भगवान के दर्शन किए हैं वो भगवान की स्तुति कर रहा है ना। जैसे हमने बात की प्रहलाद महाराज भगवान के दर्शन किए, स्तुति की, हाँ, और ध्रुव महाराज मिले, स्तुति की, हाँ। अर्जुन को भी जब भगवान का विराट रूप देख लिया तो क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हाँ। जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, जो भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शिव जो हैं, शिव जी भी भगवान से मिल रहे हैं तो उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भक्त जो है भगवान के दर्शन करके वो भगवान की स्तुति आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है भगवान की स्तुति करने के पीछे? तो पहला कारण तो यह है कि जब भक्त भगवान के दर्शन कर लेता है, उसको भगवान की जो अनंत महिमा है और अपनी अनुता का, अपनी तुच्छता का बिल्कुल साफ दर्शन हो जाता है उसको, कि भगवान विभु है और मैं अनु, हाँ, भगवान। और उस वो कृतार्थ महसूस करता है भक्त, कि भगवान कितने बिजी हैं, भगवान पूरे असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मांडों का भगवान कार्यभार संभाल रहे हैं, और उसके अलावा वो कार्यभार तो चलो भगवान की इच्छा शक्ति से चल रहा है, लेकिन भगवान गोलोक धाम में बिल्कुल आराम से और बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं भगवान, और उन सब के बीच में मुझ जैसे तुच्छ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, है ना। तो भक्त इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वो भगवान की स्तुति करता है। और भगवान की स्तुति, चलो भक्त ने भगवान की स्तुति की, भगवान उसको रोकते क्यों नहीं, अरे मत करो यार, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ क्या बोले जा रहे हो नहीं, जैसे कोई हम भौतिक जगत में मिलते हैं लोगों से, तो लोग अगर कुछ बोले तो कई बार बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, या मन में अच्छा लगता है, लेकिन बाहर से हम बोलते हैं अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना, चाहे मन में अच्छा लग रहा हो, लेकिन भगवान ने कभी नहीं बोला उनको, किसी भी भक्त को भगवान ने बोला है अरे छोड़ो भाई बहुत हो गया, 10 श्लोक बोल दिए अब और मत बोलो बहुत हो गया। जब तक भक्त की जितनी इच्छा है, जब तक वो बोलना चाहता है, भगवान धैर्य से आराम से बैठ के सुनते रहते हैं उसकी बात, नहीं है नहीं आश्चर्यजनक बात। नहीं तो भगवान कह भी सकते हैं अरे भैया टाइम वेस्ट हो रहा है, चल तेरा काम हो गया, दर्शन दे दिए, अच्छा टाटा बाय बाय, लेकिन भगवान पूरा समय देते हैं भक्त को। तो भगवान क्यों भक्त को स्तुति करने से नहीं रोकते, क्योंकि पहली बात यह है कि जो भक्त है, जो भी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वो उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं करते। वो ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, है ना। भगवान में एक पत्थर उठाने की ताकत है, वो बोलेंगे पूरा पर्वत उठा लिया आपने, ऐसा नहीं भक्त कर रहे। भक्त जब भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो जो सत्य है, जो उनकी अपनी रियलाइजेशंस हैं, जो उनकी अपनी अनुभव है, जो उन्होंने देख लिया, उसके आधार पर वो भगवान की स्तुति करते हैं। नहीं तो अगर कोई गलत बात कर रहा होता, भगवान उसको रोक देते कि देखो आप गलत बात मत बोलो, आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन गलत बात बोलोगे तो नहीं जमेगा। नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भक्त हैं, भक्त में गुण होता है कि भक्त कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता। भक्त जो है परम सत्य का भक्त होता है, भक्त है, और परम सत्य का भक्त होने के कारण भक्त कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता। इसलिए जब भगवान के सामने भी आता है तो भी वो सत्य वचन ही बोलता है, वो तब भी वही बात बोलता है जो उसने अनुभव की है, जो उसने साक्षात देखा हुआ है। जैसे भक्तिनोद ठाकुर है, भक्तिनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, हाँ, भोग आरती जिसे कहते हैं, है ना, कि सारे वो भक्त इकट्ठे हुए, किसने क्या किया और क्या क्या वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई थी, लूची, चीनी, हाँ, अनेक तरह के पदार्थ थे, पहले किसने खाया, फिर किसने खाया, तो वो भक्तिनोद ठाकुर कैसे कह पा रहे हैं? वो देख के कह पा रहे हैं, उन्होंने कुछ कल्पना नहीं कर लिया उन्होंने कि ऐसे होता होगा, वो देख रहे हैं और देख के लिख रहे हैं, और हम इसलिए वो भजन हम गा रहे हैं, है ना। तो पूरी अनुभूति के साथ जो भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कुछ कल्पना कर ली हो, प्रभुपाद को पूरी ज्ञान विज्ञान सहितम, प्रभुपाद को नॉलेज भी थी और प्रभुपाद को उसका व्यक्तिगत अनुभव भी था, इसीलिए प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे। और क्योंकि प्रभुपाद ने अपने अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर ये ग्रंथ लिखे, इसीलिए जो ग्रंथ हैं, ये जो शिक्षाएं हैं प्रभुपाद की, वो पूरे संसार में लोगों के हृदय को परिवर्तित कर रही हैं। नहीं तो परिवर्तन करने की शक्ति आएगी कहाँ से, हाँ। और कहा भी गया है कि तार शक्ति बिना नाहे प्रवर्तन, कि जब तक भगवान की शक्ति नहीं होगी, जब तक भगवान का स्पर्श नहीं होगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक प्रचार नहीं किया जा सकता। प्रचार करने की शक्ति भगवान से ही आ रही है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप प्रचार करो, जाओ आप प्रचार करो, और प्रचार करने में ऐसा मत समझना कि तुम कभी रजोगुण से प्रभावित हो जाओगे। हालांकि सृष्टि का कार्य रजोगुण में समन्वित है, रजोगुण से प्रभाव, रजोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि का कार्य किया जाता है, लेकिन भगवान ने उनको बोला कि आप, भगवान ने अभय दान दिया ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि करो, लेकिन आप कभी भी रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी प्रभावित हो जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने भगवान को परखने की कोशिश की, भागवतम के दशम स्कंद में हम इसका वर्णन प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म विमोहन लीला है वो रजोगुण से प्रभावित नहीं है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित है। जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण से प्रभावित होके उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया कि ग्वाल बालों को चुरा लिया हो, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हो गए थे। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभावित हो गए थे, बोलने, अर्जुन कह रहे थे मेरा गला सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन भौतिक शक्ति से घबरा गए थे, भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ गए थे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार, जहां पर भगवान कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के इतने पास खड़े थे, हाथ बढ़ाओ और छू लो, और अर्जुन छू भी रहा था, नहीं जब युद्ध हो रहा था अर्जुन छू रहा था, कैसे पांव से छू रहा था अर्जुन, और भगवान बुरा नहीं मान रहे थे, है ना। तो इतने नजदीक था अर्जुन भगवान के, हाँ इतने नजदीक था, फिर ऐसा कैसे संभव है कि अर्जुन जो है भगवान के इतना प्रिय है, भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है और बहुत ज्यादा व्यथित है। हाँ सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो अर्जुन की व्यथा है वो भौतिक शक्ति से प्रभावित होकर नहीं है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित है। क्यों? जिससे कि ब्रह्मा और अर्जुन को भगवान को और अधिक से और अच्छे से समझने का अवसर मिले। आप देखिए, अर्जुन प्रभावित हुआ तो भगवान ने उसको भगवद गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन और अच्छे से भगवान को समझ पाया। ब्रह्मा जी जब विमोहित हुए, भगवान ने उनको अपना जो अपना ऐश्वर्य भगवान ने प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी भगवान को और अच्छे से समझ पाए, है ना। सो भगवान अपने भक्तों को मोह में डालते हैं ताकि वो उनको और अधिक से अच्छे से समझने में हेल्प करें और उनके माध्यम से जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करें। भगवान एक काम करते हैं और अनेक निशाने उससे साधते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, है ना, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन वो भी मोहित हो गया था। तो क्या दुर्योधन का मोह और अर्जुन का मोह एक ही स्तर पे है? नहीं है एक स्तर पे। हाँ क्यों? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन में एक फर्क था, अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहा था लेकिन दुर्योधन भगवान से ईर्ष्या कर रहा था। इसीलिए योग माया समावृता, इसीलिए भगवान ने योग माया का प्रयोग किया कि ताकि दुर्योधन जैसे अभक्त कर्ण दुर्योधन, हाँ, और सारे कौरव वो भगवान को देख रहे हैं फिर भी देख नहीं पा रहे हैं, पश्यन अपि न पश्यति, भगवान को देख लिया, सामने खड़े हैं भगवान, फिर भी उनको उनकी महिमा, ऐसा नहीं कि भगवान अदृश्य हैं, दिख रहे हैं उनको लेकिन भगवान की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। तो महिमा नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए इसको, हालांकि समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि देख नहीं पा रहे हैं, नहीं। सो अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन अर्थात सिद्धांत के द्वारा भगवान के दर्शन की जा सकते हैं। जब तक हम भगवान की महिमा नहीं समझ लें, हम भगवान के दर्शन कर लेंगे तो भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में ही रह रहे थे, गोपीनाथ आचार्य के बहनों ही हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, पुरी में रह रहे हैं, रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं रोज, हाँ, लेकिन फिर भी निराकारवाद से प्रभावित हैं, और इतने प्रभावित हैं कि चैतन्य महाप्रभु को देख लिया, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लिए, और क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को ही वेदांत का निराकारवाद दर्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे 7 दिन तक। तो चैतन्य महाप्रभु ने आखिर सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा क्यों की? चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा की उसका एक कारण था कि वो गोपीनाथ आचार्य के बहनों ही हैं। गोपीनाथ आचार्य पर कृपा करने के लिए, गोपीनाथ आचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया, उनको दर्शन दिए, और उसके लिए निमित्त क्या बनाया? निमित्त बनाया कि भगवान जब दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के तो बेहोश हो गए, इतने भावावेश में आ गए, बेहोश हो गए, और बेहोश होकर चैतन्य महाप्रभु ने अवसर प्रदान किया सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान की सेवा करने का। कुछ लोग तो भगवान को मारना चाहते थे, इसे कोई पागल व्यक्ति आ गया हो, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने रोका उनको कि रुको, आप इनको मारो मत, हाँ, और उनको उठा के अपने घर ले आए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको अवसर दिया अपनी सेवा करने का। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अवसर दिया प्रकाशानंद सरस्वती को बनारस में, है ना, जब प्रकाशानंद सरस्वती तो पक्के मायावादी सन्यासी थे, हाँ, उस पे हालांकि चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त रह रहे थे वहां पर, उनकी बहुत इच्छा थी, हाँ, तपन मिश्र और एक और गौड़िया ब्राह्मण थे, उनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु इन लोगों पर कृपा करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मायावादियों का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे, लेकिन भक्त की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको अवसर दिया। अवसर क्या दिया कि चैतन्य महाप्रभु मायावादियों से मिले और मिलकर वहीं पर जहां पर पैर धोते हैं वहीं पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती उठ के गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंच पे ले आए, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा कर दी। सेवा करने से चैतन्य महाप्रभु को एक मौका मिल गया उन पर कृपा करने का। भगवान मौका देते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि बहुत उत्सुक हैं भगवान कि किसी ना किसी तरह से मैं हर जीव पर कृपा करना चाहता हूँ। कैसे कृपा करूँगा? उसको सेवा का अवसर देकर, क्योंकि जब तक स्कृति नहीं होगी, जब तक पुण्य संचित नहीं होंगे, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवान अपने आप को समझने का मौका देने के लिए भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं। तो जो भी सेवा हम कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हम उनकी सेवा में जुड़े। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के और बेहोश हो गए। हम दर्शन कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा हृदय लेश मात्र भी द्रवित नहीं हो रहा, कुछ हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा कि देखो भगवान कितने सुंदर हैं, हाँ, पलक झपकना भूल जाएं, हाँ, ऐसा कोई विचार हमारे मन में नहीं आया। वो तो बोला हुआ है प्रभुपाद ने, हमने देखा हुआ है, और भक्तों को एक बार ऐसे लेट गए, एक बार वैसे लेट गए, काम खत्म हुआ, चलो अपने और काम धंधे पे लग जाओ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि प्रणाम करना खराब है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं हमें सेवा का अवसर देने के लिए। भगवान ने भगवत गीता बोली है, भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी से अनेक वचन भगवान बोल रहे हैं हमें सेवा का महत्व बताने के लिए। जब तक हम भगवान की सेवा में रुचि नहीं लेंगे, जब तक हम पूरे मनोयोग से भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा के अनेक अवसर हैं, अनेक प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की स्तुति गान करना, भगवान को बताना कि आप कितने आकर्षक हो, आप कितने सुंदर हो, आप कामदेव को भी मोहित कर लेते हो। इसीलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, मदन अर्थात कामदेव, भगवान कामदेव को भी मोहित कर ले हैं। तो हे कृष्णा, जिस प्रकार आपने कामदेव को भी मोहित कर लिया, हालांकि वो आपको काम के वशीभूत करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कामदेव ने आपके सुंदर विग्रह पर ध्यान केंद्रित किया, आपने उस पर कृपा कर दी। जिस प्रकार आपने कामदेव पर कृपा की, उसी प्रकार आप हम पर भी कृपा करें। ये संबंध तत्व है, ये संबंध तत्व है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, आप हमें भी, हालांकि मेरा हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, लेकिन आप, आपके पास वो शक्ति है कि आप उस कठोरता को खत्म कर सकते हैं, आप उस पत्थर को द्रवित कर सकते हैं। तो प्लीज, मुझ में योग्यता नहीं है, मैं ना आपकी सेवा आज तक की है, ना कभी आगे अच्छी तरह से कर पाऊंगा, लेकिन आप दयालु हो, आप प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाएं। और ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को कहने का सबसे अच्छा तरीका हमें प्रभुपाद ने बताया। प्रभुपाद ने बताया कि हम भगवान को ये बता सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, हम भगवान को ये बता सकते हैं कि हम आपके दास बनना चाहते हैं, हम भगवान को ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। किस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। तो प्रभुपाद ने बोला कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अर्थ है हे कृष्णा, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, है ना। और जब हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, जब हम भगवान की स्तुति करने के योग्य बनेंगे, हाँ, तो भगवान ऐसी कृपा हमें प्रदान करेंगे कि हम भगवान की अच्छे से स्तुति कर पाएंगे। इसका मतलब है हम अच्छे से जप कर पाएंगे। जितनी हम भगवान की अच्छे से सेवा करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम अच्छे से जप भी कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि हमारा जप में मन नहीं लगता, उचाट हो जाता है हमारा मन, कभी लगता है कभी नहीं लगता, है ना। वो इस कारण से है क्योंकि हम भगवान की सेवा में अच्छे से संलग्न नहीं हो पा रहे हैं, हम अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। सो जब तक हम, जितनी ज्यादा हम भगवान की सेवा में रुचि लेके आएंगे, उतना ही भगवत कृपा से हमारी जप में रुचि बढ़ेगी। और भगवान इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, आप जितनी अच्छे से मेरी सेवा करोगे, मैं उतनी ही आप पर कृपा करूँगा कि आप अच्छे से जप कर पाओ। अगर हम अच्छे से जप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 22 घंटे किसी और चीज के बारे में सोचें और 2 घंटे हम अच्छे से भगवान का जप कर लें। भगवान का जप अगर अच्छे से करना है तो हमें 22 घंटे भी भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम 22 घंटे भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो 2 घंटे हम तोते की तरह रट सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन हम कभी भी उसमें रुचि जागृत नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें भगवत नाम में रुचि लानी है, तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि 22 घंटे भगवान की सेवा में कैसे जुड़ूं। जब हम 22 घंटे भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमें रुचि लाने के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जप करते समय भगवान के नाम पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वतः एव स्फूर्ति अदा, अपने आप हमारा मन भगवान के नाम की ओर जाएगा। जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, उसी प्रकार हमारा मन अपने आप भगवान के नाम की ओर जाएगा जब हम अपना बाकी समय भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। सो किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। आप प्रभु, आपका प्रश्न था, आप कल कह रहे थे। हाँ,
अभी जैसे हम धाम यात्रा पे जाते हैं, तो कई बार हमारी इंटेंशन जैसे इतना ऐसी नहीं होती कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कई बार हमारे जाते हैं कि घूमने के लिए जा रहे हैं।
हाँ, सो हम वृंदावन या और कहीं धाम जा रहे हैं तो घूमने मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हम घूमने के लिहाज से जा रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं? आप किसी भी तरह से वृंदावन धाम जा रहे हो, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। वृंदावन धाम जाना मतलब पाद सेवनम, तीर्थ यात्रा का मतलब पाद सेवन है। अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप किसी भी भाव से वृंदावन धाम जाओ, आप घूमने के लिए लिहाज से जा रहे हो तो बड़ी बात है, अब आप भगवान से लड़ने भी जाओगे वृंदावन धाम तो भी कृपा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? जैसे कालिया नाग को प्राप्त हुई। कालिया नाग तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, भगवान को मारने की कोशिश कर रहा था, फिर भी भगवान ने उसको अपनी चरण रज दी। जो चरण रज ब्रह्मा इंद्र शिव इत्यादि देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान ने वो चरण रज कालिया नाग को प्रदान की, तो प्रश्न उठा कि क्यों प्रदान की? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इसलिए प्रदान की क्योंकि कालिया नाग ने वृंदावन धाम की शरण ली थी। बस हम किसी भी भाव से वृंदावन धाम जाएंगे, हमें उसका फायदा मिलेगा ही, क्योंकि वृंदावन धाम और वृंदावन और भगवान कृष्ण अभिन्न है। भगवान और भगवान के धाम में, भगवान के नाम में कुछ भी भेद नहीं है। तो किसी भी भाव से जाओ, भगवान की कृपा मिलेगी ही, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वृंदावन धाम जाने का क्या है? सबसे अच्छा तरीका है वृंदावन धाम जाने का कि 2 परिस्थितियों में वृंदावन धाम जाओ। पहली स्थिति क्या है? जब आपकी कुछ सेवा हो, जैसे आपको किसी ने बोला कि प्रभु वहां से कुछ बुक्स लानी है, या माला खरीद के लानी है, झोलियां खरीद के लानी है, या कुछ सामान लाना है, कुछ सेवा अगर है, सेवा को सामने रख के आप वृंदावन धाम जाओ तो और भी अच्छा है। और दूसरी परिस्थिति वो है जब आप किसी वरिष्ठ भक्त के सानिध्य में, किसी वरिष्ठ भक्त के साथ आप वृंदावन धाम जाओ। और उससे क्या होगा, जब हम वरिष्ठ भक्तों के साथ रहेंगे, जैसे कभी महाराज जाते हैं, कोई सन्यासी जाते हैं, हाँ, तो उनके साथ जाओ। कोई और अच्छे वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव है, वो जा रहे हैं, उनके साथ जाओ। तो वो वैष्णव के साथ आप जाओगे तो आप नज़र रखेंगे वो, और आपको बीच में टोक देंगे, प्रभु ऐसे नहीं, देखो आप ऐसे मत करो, ऐसे करो। और वरिष्ठ वैष्णव के साथ जाएंगे, सन्यासी के साथ जाएंगे, तो मन में एक डर भी रहता है कि वो अगर हमें कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे, तो हम अपने आप ही अच्छे से व्यवहार करेंगे, है ना। और मन में कुछ भी हमारे कुछ शंका होगी, तुरंत सामने से पूछ लेंगे, निवारण हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये दो परिस्थितियों में अगर हम वृंदावन धाम जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैसे भी जा रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर भगवान ने कालिया नाग तक पर अगर दया की, क्योंकि उसने वृंदावन धाम की शरण ली थी, तो आप भगवान से ईर्ष्यावश तो नहीं जा रहे हो, तो आप जाओगे तो आप पर क्यों कृपा नहीं करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे, ठीक है। हाँ
अच्छा,
हाँ
हाँ
22 घंटे हम किस प्रकार अपनी चेतना को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो सोने से बात करते हैं कि हम सो रहे हैं 6-7 घंटे, है ना, तो हमें सोना चाहिए ये सोचकर कि हम एकदम थकान सारी खत्म हो जाएगी, हम सोने से एकदम बहुत ही चुस्त होकर हम उठेंगे तो हम अच्छे से भगवान का भजन करेंगे, है ना। हम कुछ भी खाएं, प्रसाद खाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं, तो हम ये सोचें कि मैं दाल चावल नहीं खा रहा, मैं भगवान की जूठन ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। तो वो कैसे पता लगाएंगे कि हम भगवान की जूठन खा रहे हैं, हम दाल चावल नहीं खा रहे, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब हम सिर्फ शरीर के निर्वाह योग्य खाएंगे, है ना। अगर जो टेस्टी प्रसाद है वो कम लेंगे, जो नॉर्मल सादा प्रसाद है वो हम ज़्यादा लेंगे। टेस्टी प्रसाद भगवान को भोग लगाया, अच्छी बात है, तो क्या हमें नहीं खाना चाहिए टेस्टी प्रसाद, हमें, हमारे लिए नहीं है टेस्टी प्रसाद, वो टेस्टी प्रसाद नए भक्तों के लिए है, उनको खाने दो, हमारे लिए सादा प्रसाद है। आप सादा प्रसाद खाओ, आप दाल चावल खाओ, रसगुल्ले गुलाब जामुन जो नए भक्त हैं उनको दो, ताकि वो बार बार मंदिर आए, है ना। आप गुलाब जामुन का जो डोंगा है, भगोना, उसको अलग पर अलग अपने पास मत रख लो कि हम बाद में खाएंगे सारे भक्त मिलके, बिल्कुल बकवास है। 56 भोग भगवान को ऑफर करो, तो वो अपने लिए कुछ थोड़ा सा निकाल लो सम्मान देने के लिए, बाकी नए भक्तों में बांटो, ताकि वो और उनको कृपा मिले भगवान, चाहे वो नहीं भी सोचेंगे, हो सकता है दाल चावल नहीं खाए, गुलाब जामुन तो खा ही लेंगे, तो कृपा मिलेगी, सुकृति अर्जित करेंगे, कभी ना कभी भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में रुचि आएगी। सो आप जितना सादा प्रसाद खाओगे, और जो तथाकथित हम कह सकते हैं, जी भी तो बता रही है कि ये टेस्टी है, वो टेस्टी नहीं है, नहीं, अगर तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो स्वादिष्ट प्रसाद भी टेस्टी नहीं लगता, या डायबिटीज हो जाए तो गुलाब जामुन भी लगता है कि ये तो बम की गोली है नहीं, इसको खाते ही इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, है ना। तो जबान और शरीर ही तो बता रहा है क्या टेस्टी है क्या नहीं है। साधारण सादा प्रसाद खाओ, और जो लोगों की नज़र में टेस्टी है उसको दूसरे नए भक्तों को खिलाओ, या अपने से जो आपके साथ के भक्त हैं उनको खिलाओ। ऐसे आप नानक प्रभु को बोलो है प्रभु प्रसाद लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जबरदस्ती दो उनको, खुद मत लो, है ना। सो उससे पता चलेगा कि आप जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेक करते थे कि लोग जो हैं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रसाद पा लेते थे तो सारे भक्तों में होड़ लगती थी उनका झूठा प्रसाद लेने की, महाप्रसाद लेने की। तो भक्ति सिद्धांत देखते थे जाके कौन क्या खा रहा है। तो जो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो जो सांभर में एक वो लंबी सी डंडी डलती है ना, क्या कहते हैं उसको, एक लंबी सी डंडी डलती है, हाँ सो ड्रम स्टिक बोलते हैं हाँ इंग्लिश में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत प्रिय थी वो, तो लेकिन ड्रम स्टिक आप खा नहीं सकते, नहीं तो उसका रस चूस के छिलके रख देते हैं, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती देखते थे कौन उन छिलकों को चूस रहे हैं और कौन जो है स्वादिष्ट वाला भोजन खा रहा है। तो जिसकी वाकई में प्रसाद में श्रद्धा होगी, जो वाकई में जिसकी गुरु में श्रद्धा होगी, वो ड्रम स्टिक के छिलकों को चबाएगा, है ना। तो भक्ति सिद्धांत देखते थे कौन भोगी है और कौन योगी है। तो इससे चेक करते थे। जो लोग काम करते हैं उनको अपना धन का कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में देना चाहिए, तो उनका जो काम करने का जो है वो शुद्धिकरण होगा, है ना। तो वो जो काम है वो काम नहीं रहेगा, भगवान की सेवा बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप अपना पूरा दिन, आप 22 घंटे सोच सकते हो कि किस प्रकार भगवान की कैसे हम सेवा में लगे रह सकते हैं, ठीक है। चलो आप सब एक प्रश्न और ले लेते हैं। हाँ हाँ नहीं, वो कहाँ मोहित हुए थे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, कहाँ मोहित हुए थे? हाँ अर्जुन और ब्रह्मा मोहित हुए थे। हाँ हाँ हम गुरु और वरिष्ठ वैष्णव के संरक्षण में रहते हुए भी क्यों प्रभावित हो जाते हैं भौतिक जो प्रकृति है? क्योंकि हमें जंग लगा हुआ है। गुरु और कृष्ण तो चुंबक हैं और हम लोहे हैं, तो लोहे को स्वाभाविक रूप से चुंबक की ओर भागना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि जंग लगा हुआ है। और वो जो जंग है वो क्या है? जंग भोग वासना है, है ना। वो जंग है अपने आप को गुरु और कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान समझने की गलती, है ना। जिस प्रकार इसके अनेक उदाहरण है, गुरु को छोड़ो भगवान के साथ रहते हुए भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रह रहा था फिर भी भ्रमित हो गया, कैसे? बलभद्र भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन यात्रा के लिए गए थे सन्यास के बाद, तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों ने उनको बोला कि आप ये बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाओ आपकी सेवा के लिए। बलभद्र भट्टाचार्य एक ब्राह्मण वैष्णव थे, उनके साथ में एक और ब्राह्मण उनके सेवक भी थे, तो दो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे वृंदावन भगवान की सेवा के लिए, भगवान का ध्यान रखने के लिए, प्रसाद वगैरह की व्यवस्था करने के लिए। तो कुछ लोग जब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में रह रहे थे तो कुछ लोग आए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ दर्शन दे रहे हैं? वो कालिया दह में दर्शन दे रहे हैं, रात को कालिया नाग में नृत्य करते हैं वो, तो वो रोशनी दिखाई देती है। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं है जाने की। चला गया वो देखने के लिए। तो फिर अगले दिन लोग आए और लोगों ने आगे बताया कि वो तो मछुआरे की नाव थी, और मछुआरे की नाव में दिया जलता है तो लोग सोचते हैं कि कालिया नाग के फन पे भगवान नाच रहे हैं। सो बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहे हैं, उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, फिर भी भ्रमित हो गया। काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास गए थे, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ रह रहे 24 घंटे, तो भी भ्रतहारी जो कबीले वाले हैं उनके साथ में प्रभावित होकर चला गया। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के, चैतन्य महाप्रभु को जाके पूरे कबीले वालों के साथ लड़ाई करनी पड़ी, हाथापाई करनी पड़ी, और उसको बालों से घसीट के चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास को वापस लेके आए। सो ऐसा नहीं है कि हम गुरु के साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमें प्रभावित नहीं पड़े। कितने लोग सन्यासियों के पर्सनल सर्वेंट बनते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। चले नहीं जाते, कितने लोग हैं, मैंने खुद दर्जनों लोग देख लिए जो कि अपने गुरु की पर्सनल सेवा करते हैं फिर भी उनका दिमाग आउट हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। गुरु के, कृष्ण के पास रहना अच्छा है। वंदो मोई सावधान मते, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं रहे तो गुरु के साथ एकदम करीब होते हुए भी तो भी हम गलती खा बैठेंगे। हमें गुरु के साथ, तो गुरु आग की तरह है, ज्यादा पास जाओगे जल जाओगे, ज्यादा दूर रहोगे ठंड लगेगी। तो सावधान, सावधानी से गुरु का और कृष्ण का संग करो। ये मत सोचो कि मिल गया यार संग, फ्री का संग है, लूट लो, नहीं। बहुत सावधानी से गुरु का, कृष्ण का, वरिष्ठ वैष्णव का संग करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और कृष्ण कुछ भौतिक या साधारण वस्तु नहीं है, है ना, और उनके जितने भी कार्यकलाप हैं वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित है, है ना। और अगर हमें गुरु की कुछ बात समझ में नहीं आ रही, हाँ, तो समझना चाहिए कि गुरु में कमी नहीं है, हमारी समझ में कमी है। हाँ, है ना, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि एक वैष्णव ने बोला है, यद्यपि नित्यानंद सुराबाड़ी जाए, हमने एक बार पहले भी ये श्लोक बोला था, यद्यपि नित्यानंद सुराबाड़ी जाए तथापि हो सही मोरा नित्यानंद राय। कि मैंने देख लिया नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान में जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे प्रभु ही रहेंगे, वो मेरे स्वामी ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु अच्युत हैं, नित्यानंद प्रभु कभी भी गिर नहीं सकते, कभी भी भटक नहीं सकते। ये श्रद्धा जब तक हमारे मन में नहीं रहेगी, तब तक हम वैष्णवों के गुरु के साथ रहेंगे तो भी गलती होने की संभावना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील